11 किधौ सूर को पद लग्यो। सूरदास की कविता के बारे में एक दोहा प्रचलित है जिसमें उसकी वेधक क्षमता का कथन किया गया है। किधौ सूर को सर लग्यो, किधौ सूर की पीर, किधौ सूर को पद लग्यो। कहते हैं कि यह दोहा संगीत सम्राट तानसेन द्वारा रचित है। वह किसी के भी द्वारा रचित हो, सूर की कविता की अद्वितीय प्रभाव क्षमता उसके अमित प्रभाव की बड़ी सटीक व्यंजना करता है। सूर कालजयी कवि हैं और बिरले कवि ही कालजयी हो पाते हैं। सूर की कविता में जो हृदय वेधक क्षमता है, एक लंबी कालावधि के बाद वह आज भी उतनी ही असरदार बनी हुई है और उसे कालजयी बनाए हुए है। इस निबंध में हम सूर की कविता को समग्रता में न लेते हुए उसके कुछ पक्षों पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करेंगे, जिनका उनके कालजयी होने में बहुत बड़ा योग है तथा जो उसे आज भी हमारी जरूरत बनाए हुए हैं, जिसके नाते वह आज भी हमारे लिए अर्थवान है और जिनके तहत सूर के कवि व्यक्तित्व का, उनके सहृदय भक्त का अत्यंत मानवीय रूप हमारे सामने उजागर होता है और जिनके नाते सूर ही क्यों मध्यकाल की तमाम भक्ति कविता हमारे लिए जरूरी हो उठती है। मध्यकाल की भक्ति कविता का महत्व हमारे सामने उस समय और भी उजागर हो उठता है जब हम एक ओर उसके पहले के नाथपंथी योगियों और वज्रयानी सिद्धों की कृक्ष तथा गोह्य धर्म और रहस्य साधना तथा जन मन पर पड़ने वाले उसके आतंकदायक चमत्कारी प्रभाव को देखते हैं। दूसरी ओर उसके बाद के नायिका भेद प्रधान दरबारी रीत काव्य और उसके मूल में निहित सामंती मानसिकता से साक्षात्कार करते हैं। इन दो छोरों के बीच 300 वर्षों से भी ऊपर प्रवाहित होने वाली भक्ति की स्रोतस्विनी यदि हमें बलात् अपनी विशिष्ट अहमियत का एहसास कराती है तो यह स्वाभाविक ही है। कहना न होगा कि तत्कालीन सामाजिक जीवन में नाथों और सिद्धों से अराजक और आतंककारी प्रभाव को समाप्त करते हुए सामाजिक जीवन की दिशा को भक्त की इस विराट स्रोतस्विनी की ओर मोड़कर संत तथा भक्त कवियों ने एक महत्व सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया। गोस्वामी तुलसीदास की इस उक्ति के साथ की गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में अपनी जो टिप्पणी प्रस्तुत की है वह हमारे कथन को पुष्ट करती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, जिस समय मुसलमान भारत में आए सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा प्रबल और विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को पाने सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 65। यह सही है कि जिस भक्ति आंदोलन के प्रवाह में भक्ति काव्य ने जन्म लिया, कालांतर में उसका वही रूप नहीं रह गया जैसा वह प्रारंभ में था। निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति और सगुण कृष्ण भक्ति से सगुण राम भक्ति तक पहुँचते पहुँचते साधारण जन के हाथ से निकलकर उसके बहुत से सूत्र समाज के प्रभु वर्गों के हाथ में आ गए। जिस मनुष्य सत्य को चंडीदास ने सबसे बड़ा सत्य घोषित किया था और वर्ग वर्ण की कठोर दीवारों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए जिस मानव धर्म को कबीर तथा अन्य संतों ने सबसे बड़ा धर्म बताया था, वे मनुष्य सत्य और मानव धर्म भी समाज के प्रभु वर्गों द्वारा अपने हितों के अनुरूप ढाल लिए गए। फिर भी कुल मिलाकर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि समूचे भक्ति आंदोलन तथा समूचे भक्ति काव्य की मूलवर्ती चेतना मानवतावादी जनवादी चेतना ही है और इसे मानवतावादी चेतना से विच्छिन्न करके भक्ति आंदोलन, भक्ति काव्य तथा सूरदास और उनकी कविता को नहीं पहचाना जा सकता। भक्ति काव्य अपने मूल रूप में मानवतावादी काव्य ही है। यह और बात है कि मानवतावादी स्वरों का उद्घोष किसी कवि की रचना में क्रांतिकारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के काव्य में वह रागात्मक स्तर पर अभिव्यक्त हुआ है और किसी के यहाँ वह सुधारवादी आशय लिए हुए है। भक्ति काव्य की यह वह जमीन है जो उसे कालजयी बनाती है। सवाल है कि सुर की कविता हो या भक्ति की धारा के किसी अन्य कवि की रचना, उसकी जीवंतता के आयाम कौन से हैं, जो मानवतावाद मूलवर्ती चेतना के रूप में उसमें विद्यमान है उसका अवलंबन कौन है, कौन है जो जादू बनकर इस सारे भक्ति काव्य और सुर की कविता के शीर्ष पर चढ़कर बोलता है। कहां से सूरदास और उनके समान धर्माओं ने अपने अनुभवों की गहन राश बटोरी है, उनकी शिरा शिरा में रक्त की तरह किसकी वाणी है या किसकी आर्त पुकार प्रवाहित हुई है, उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होने वाले सुख दुख हर्ष उल्लास शोक संताप किसके हैं, अपने प्रभु और अपने आराध्य के समक्ष ये भक्त कवि किसकी व्यथा कथा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, वह कौन सा हृदय है जिसमें लीन होकर इतनी सरस उक्तियां उन्होंने कही हैं। सूरदास की कविता हो या भक्ति काल के दूसरे संतों या भक्तों की कविता, जब हम इन सवालों तथा इन जैसे दूसरे सवालों की गहराई में उतरते हैं तो उनका एकमात्र उत्तर हमें यही मिलता है कि भक्ति काव्य की जीवंतता तथा शक्ति का स्रोत और कुछ नहीं वह लोक जीवन ही है, जिसे इन भक्त कवियों ने खुली आंखों से निहारा तथा उसके समूचे वैविध्य और व्यापकता को अपने रचनाकार मानस में आत्मसात किया है। किताबों से बढ़कर इन्होंने अपने देखे हुए और भोगे हुए पर विश्वास किया है। लोक जीवन का कोना कोना इन्होंने झांका है और उसी के भीतर से अपने अनुभवों की राश जुटाई है। लोक जीवन के समूचे प्रसार में इन्होंने सामान्य जन के ही उसकी संपूर्ण आशाओं आकांक्षाओं सुख दुख के साथ दर्शन किए हैं, उसी के साथ एकात्म हुए हैं, उसी की वाणी उनकी रचनाओं में गूंजी है और उसी के सुख दुख लेकर वे अपने प्रभु के समक्ष प्रणत हुए हैं। उसकी भक्ति का आलंबन भले ही ईश्वर हो किंतु उनका मनुष्य जो मनुष्य धर्म है उसका आलंबन यह साधारण जन ही रहा है। लोक हृदय में अपने हृदय को लीन कर अपनी सरस वाणी से उन्होंने इसी जन की संतत छाती को सींचा और शीतल किया है। मनुष्य से जन से लोक से संसार तथा समाज के राश राश वैविध्य से जुड़ने की बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लोक हृदय की सही और सच्ची पहचान की मुगालता भी प्रायः सभी को हो जाया करता है, किंतु लोक से मनुष्य से लोक और मनुष्य के वास्तविक संवेदनों से जुड़ना, संसार को उसकी समग्रता में आत्मसात करना तो दूर, पहचान भी पाना और लोक हृदय से एक हो जाना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। ये बातें ताक पर रखी हुई वस्तुएं नहीं है कि हाथ बढ़ाने पर उन्हें पा लिया जाए, ये आत्मदान मांगती हैं, जिनमें जन देवता या लोक देवता के सामने बाहर भीतर हर स्तर पर अपने को दे देने का साहस उत्कंठा और सामर्थ्य हो वही इनका स्वामी बन सकता है। सूरदास तथा उनके समान धर्माओं में यह साहस यह निष्ठा तथा यह आस्था थी, इसीलिए वे अपने को शक्ति के इस जीवंत स्रोत से जोड़ सके जो सैकड़ों वर्षों बाद आज भी उन्हें जीवित बनाए हुए है। उनकी कविता मिसाल है इस बात की कि लोक जीवन और जन जीवन से एकात्म होना किसे कहते हैं। वह मिसाल है इस बात की कि सामान्य जन से या लोक से जुड़कर ही कोई रचना कालजयी बन सकती है। सुर और उनके समान धर्माओं की कविता लोक जीवन से गृहित अनुभूतियों की कविता है और इसीलिए लोक जीवन को प्रभावित करने में वह इतनी सक्षम भी है। इस कविता के सारे आध्यात्मिक संकेतों को निकाल दिया जाए, उसके सांप्रदायिक आशयों तथा धार्मिक दार्शनिक निरूपणों को भी तरजीह न दी जाए, उसे महासंसार सागर के रूप तरंगों से प्रभावित होने वाली उसी से प्रेरणा लेने वाली विशुद्ध मानवीय और विशुद्ध लौकिक अनुभूतियों की कविता के रूप में स्वीकार किया जाए तो भी लोक जीवन के बहुआयामी सौंदर्य का जो अक्षय कोष उनमें है, मानवीय जीवन के हर्ष विषाद का जो आख्यान उसमें है, लोक की पीड़ा और लोक के उल्लास के जो स्वर उसमें है, लोक जीवन की जितनी खरी और सटीक पहचान उसमें है, मात्र इन सब के बल पर ही वह किसी भी सहृदय के मन पर अमिट छाप छोड़ने में समर्थ है। वह अपने भक्ति परक आध्यात्मिक रहस्यात्मक सांप्रदायिक और धार्मिक दार्शनिक चरित्र में किसी के लिए प्रासंगिक और किसी के लिए किसी युग के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो सकती है और है, पर जहाँ तक हमारा और हमारे युग का सवाल है, वह अपनी मानवीय तथा लौकिक आकृति के संदर्भ में ही हमारे लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है और इसी रूप में एक मूल्यवान विरासत के रूप में हमें ग्राह्य है। वह हमें ग्राह्य इसलिए भी है कि उसके रचयिताओं में हमें वह आत्मसम्मान देख पड़ता है, वह तेजोदीप्त वाणी सुन पड़ती है जो अपने आराध्य के अलावा किसी के समक्ष दीन नहीं होती, बड़े बड़े सम्राटों तथा बादशाहों की मनसबदारी को लानत मानती है, बड़े से बड़े प्रलोभनों के समक्ष भी घिघियाती नहीं, व्यवस्था तथा स्थापित सत्ता से न केवल समझौता नहीं करती, उसकी अनित अन्याय अनाचार तथा अहंकार की धज्जियां उड़ाती है, जन को त्रास देने वाली शक्तियों पर वज्र प्रहार वज्र बनकर टूटती है तथा जन की व्यथा पर करुणार्द्र हो उठती है। यह उन संतों और भक्तों की वाणी है जिन्हें बड़े से बड़े आश्रय मुहैया थे, किंतु जिन्होंने सारे आश्रयों को ठुकरा कर ठेठ जन सामान्य के बीच उसके हृदय में बैठ कर भरोसो दृढ़ इन चरण अनकेरो जैसी निष्कंप आस्था के साथ भक्ति के गीत गाए, जिन्होंने अपने आराध्य के अलावा जिसके प्रति वे संपूर्णतः समर्पित थे और साधारण जन के सिवा जिसके वे प्रतिनिधि थे किसी से सरोकार नहीं रखा, जिन्होंने मनुष्य को कभी हेय नहीं माना, लोक और उसकी पीड़ा की सच्चाई को सदा सामने रखा, अपनी आस्था का प्रसार उन्होंने मानव जगत के विविध रूपों के भीतर ही किया, उन्होंने मनुष्य में विकास और आत्मविस्तार की असीम संभावनाएं देखी। इन भक्त कवियों की कविता को इसी आधार पर मानव जीवन की समग्रता की कविता कहा गया है जो सर्वथा उचित है। सवाल है कि इन्हें अपने समय की बड़ी से बड़ी सत्ता को ठुकरा देने की जो प्रेरणा मिली उसका राज क्या है। जाहिर है कि अपने समय के शीर्ष सत्ता को चुनौती देने का साहस वही कर सकता है जो उतनी ही गहराई से जन साधारण के जीवन से जुड़ा हो। इन रचनाकारों की आस्था का स्रोत साधारण जन से इनकी यही गहन संप्रिक्ति है। इस संप्रिक्ति के नाते ही ये प्राकृत जनों की प्रशस्ति से बच सके तथा नर की मनसबदारी को धिक्कार सके। यह बहुत बड़ी आस्था है जो हवा में नहीं मिलती, जिसके लिए अपने को जन के नाम लिख देना पड़ता है, दे देना पड़ता है। यह वह कविता है जो मात्र वैराग्य निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता तक सीमित नहीं है, इसमें जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्तिमय जीवन के प्रति असीम प्रेम भी दिखाई पड़ता है। सगुण भक्त कवि भक्ति का रास्ता जीवन के ठेठ बीच से ही निकालते हैं और सूर में मानवीय श्रृंगार प्रेम वात्सल्य तथा जगत के नाना रूपों की जो मनोरम झांकी देख पड़ती है वह भी इस बात की परिचायक है कि बिना जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार किए इस प्रकार की झांकियां प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि उसमें अंतर विरोध है, रहस्य अध्यात्म की चर्चा है, मिथक तथा फैंटेसी है, किंतु ऐसा नहीं है कि उसमें जीवन का खरा यथार्थ बोध न हो। उसमें प्रखर सामाजिक चेतना भी है जो इन कवियों के अंतर विरोधों को उभारती है। पूरे मध्य काल में अकाल पर सबसे अधिक लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास ही हैं। वही है जो हर प्रकार की आग से पेट की आग को बताते हैं, बड़ी बताते हैं, और वही है जो इस आग में जलते साधारण जन की पीड़ा तक हमें ले जाते हैं। इस कविता में ईश्वर और ब्रह्म भी है, उसके अवतारी रूप का चित्रण है, किंतु ब्रह्म के अवतारी रूप को जीवन के नाना आयामों में संसार के बीच ही अपनी लीलाएं करते दिखाया गया है। जैसा कहा गया है, इसमें यदि एक ओर संसार को असार कहा गया है तो दूसरी ओर मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के नाना संस्कारों को भी चित्रित किया गया है। ये अंतर्विरोध वस्तुतः उस युग के अंतर्विरोध हैं जो इन कवियों की रचना में भी मूर्त हुए हैं। हम इन अंतर विरोधों को ढकना नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि हम इन अंतर विरोधों के बीच से सुर और दूसरे भक्त कवियों की वास्तविकता को पहचाने और जहां वे इन अंतर विरोधों को अतिक्रमित करते हैं उन बिंदुओं को रेखांकित करें। भक्ति काव्य के मानवेतर दिव्य प्रसंग जिनके लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो वे हों, जहां तक हमारा सवाल है हम उनके उस रूप को सहेजने के आग्रही हैं जहां उनकी कविता मानवीय जीवन को उसके विविध छवियों में हमारे सामने मूर्त करती है, उससे जुड़कर सामने आती है, जुड़ती ही नहीं उसे जीवंत बनाकर हमारे सामने पेश करती है।